भागवत सार की श्रृंखला में दसवें स्कंद के 15वें अध्याय पर चर्चा है, जिसका शीर्षक है धेनु का सुर का वध। इसके पहले श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे, तो कृपया आप सब दोहराइए। श्री शुक उवाच रतश्च पौगंड वयाश्रितो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपाल सम्मतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः श्रीशुक उवाच हतश्च पौगण्ड वयाश्रितो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपाल सम्मतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदये वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्ड वयाश्रितो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपाल सम्मतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः प्राप्त करके ब्रजे वृंदावन में बभूवतु बन गए तौ दोनों राम तथा कृष्ण पशुपाल ग्वालों के रूप में सम्मतौ नियुक्त गाय चार यंतो चराते हुए सखी भी समम अपने मित्रों के साथ साथ पदय पांव के चिन्हों से वृंदावनम श्री वृंदावन को पुण्यम पावन अतीव अत्यंत चक्रतु उन्होंने बना दिया। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी के शिष्यों के द्वारा। शिवदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था अर्थात 6 से 10 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गायें चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्ह से अत्यंत पावन बना दिया। तात्पर्य, भगवान कृष्ण अपने उन ग्वाल बाल मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहते थे जिन्हें पहले अभासुर ने निगल लिया था और बाद में ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए थे। फलतः भगवान ने तय किया कि वे उन्हें तालवन ले जाएंगे जहाँ स्वादिष्ट पके हुए बहुत से फल थे। क्योंकि अब कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर आयु तथा बल में कुछ बड़ा हुआ दिखने लगा था, अतः नंद महाराज समेत वृंदावन के गुरुजनों ने कृष्ण को बछड़े चराने वाले से बढ़ाकर नियमित गोपालक के पद पर प्रोन्नत करने का निश्चय किया। अब कृष्ण प्रौढ़ गायों सांडों तथा बैलों की रखवाली किया करते थे। इसके पूर्व नंद महाराज स्नेहवश कृष्ण को नन्हा जानकर तथा गाय बैलों की रखवाली करने में अक्षम मानते रहे। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य अनुभाग में कहा गया है, शुक्लाष्टमी कार्तिक स्मृता गोपाष्टमी बुध है तद्दिनाद वासुदेव भूत गोप पूर्वत्सव। विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उस दिन से भगवान वासुदेव गायों की सेवा करने लगे जबकि इसके पूर्व वे बछड़े चराते थे। पदय शब्द से सूचित होता है कि भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को अपने चरण कमलों से पवित्र बनाया। वे न तो जूता पहनते थे न कोई अन्य पदत्राण, अपितु वे नंगे पांव जंगल में घूमते थे जिससे वृंदावन की बालाओं को महान चिंता रहती थी कि उनके कोमल चरण कमलों को कहीं चोट न लग जाए। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। इस अध्याय की चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थना को दोहराएंगे, सब लोग एक साथ इसको करें।
सर्वशास्त्रादिपीयूष सर्ववेदेक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो श्रीकृष्णामणिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगे मद्गुरो मन्महाधन मन निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु तदाहि अलीली चोचतकर आनमुंच कदाचिन्मा तेना हृत्कंठयोस्मुरा।
धेनु का सुर के व्रत का वर्णन इस अध्याय में है, जहां भगवान वर्णन करते हैं कि पहले, जैसे हम लोग इस श्लोक में पढ़ रहे थे, तो पहले कुछ श्लोकों में वर्णन है कि कैसे भगवान वृंदावन के अंदर प्रवेश करते हैं गायों को चराने के लिए। तो अब वो वत्सपाल से गोपाल हो गए हैं। तो जब भगवान 6 वर्ष के हुए तब तक बछड़ों को चराते थे। तो श्री कृष्ण की पहले जब जन्म होता है तब से लेकर 5-6 वर्ष तक, या 5 वर्ष तक ये बाल्य लीला कही जाती है। 6 वर्ष से आगे 10 वर्ष तक पौगंड लीला कहते हैं। भगवान की जो लीला होती है उसको पौगंड लीला कहते हैं। तो भगवान ऐसे बाल लीला समाप्त कर चुके, अब पौगंड लीला में प्रवेश कर रहे हैं। और फिर भगवान आगे किशोर लीला करेंगे 10 साल के बाद। तो भगवान अब पौगंड लीला में प्रवेश कर रहे हैं और गायें चराना अब उन्होंने शुरू कर दिया। अब नंद महाराज ने सोचा कि अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं, अब इनको गायें चराना, गायें बैल सांड लेके जा रहे हैं। कितने साल के हो गए थे सक्षम? 6 साल। 6 साल का बच्चा वो गायों को, तो नंद अब ये गायों को ले जा सकता है, बैलों को ले जा सकता है। हम लोग देखते 6 साल का बच्चा कितना होता है, छोटा सा होता है, लेकिन कृष्ण को उन्होंने, तो ये उस समय की प्रथा थी। और सभी बच्चे जा रहे हैं, ऐसे नहीं केवल कृष्ण जा रहे हैं, सभी बच्चे अपनी अपनी गायों को लेकर। जैसे कृष्ण के पास 9 लाख गायें थी, अलग अलग दल थे उनकी गायों के। श्री कृष्ण की गायों के 108 दल हैं और अलग अलग रंग के आधार पर ये दल बने हुए हैं। तो रंग मतलब गायों के जो रंग होते हैं उनके आधार पर दल बनते हैं। और कृष्ण हरेक गाय के नाम को जानते हैं, हरेक गाय को नाम से पुकारते थे। हम लोग कभी कभी गौशाला में जाते हैं तो खुद ही भ्रमित हो जाते हैं, इतनी सारी गाय किसका नाम है, इसके ऊपर लिख कर रखना पड़ता है उसका नाम। लेकिन कृष्ण को हर एक गाय का नाम याद रहता था। जब कृष्ण बुलाते थे तो नाम से पुकारते थे और गाय को बड़ा अच्छा लगता था कि कृष्ण अब हमें पुकार रहे हैं। तो अब ये जो लीला हुई, जिसे कहते गोपाष्टमी के दिन जब भगवान ने गायों को चराना शुरू किया, तो क्यों शुरू किया? केवल नंद महाराज नहीं चाहते थे, गाय भी चाहती थी। गायों ने सोच लिया कि अभी हमने 1 वर्ष तक कृष्ण को दूध पिलाया है, कृष्ण सारे बछड़े बने हुए थे ना ब्रह्म विमोहन लीला में, तो 1 वर्ष तक अब उन्होंने प्रेम कर लिया इतना, बोले अब हम उसके बिना नहीं रह सकते, अब अगर कृष्ण जाएंगे तो ही हम जाएंगे, नहीं तो हम चरने नहीं जाएंगे। तो इतना प्रेम हो गया था। और फिर नंद महाराज भी सोच रहे थे बड़े हो गए हैं तो ठीक है, फिर गाय चराना उन्होंने प्रारंभ किया। बहुत सुंदर वर्णन अन्य स्थानों पर आता है कि जब गायों को पता चला, ये चर्चा हो रही थी नंद महाराज इत्यादि में कि एक काम करते हैं, कल से अब ये गाय चराने चला जाए, अब ये बड़ा हो गया, गायों ने सुन लिया, फिर कल से कृष्ण आने वाले हमारे साथ, बलराम आने वाले हैं। तो गायों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, तो सारे लोग आए और उन्होंने कहा देखो कल से कृष्ण और बलराम हमारे साथ आएंगे और ब्रज में इतने पत्थर हैं उनके पांव में लगेंगे, क्योंकि कृष्ण जूता तो नहीं पहनते थे, यशोदा मैया बनाकर लाई थी कृष्ण के लिए बहुत अच्छा जूता, जा रहे हो वन में जूता पहन कर जाओ। तो कृष्ण ने कहा कि मैं तो जूता पहनूंगा, लेकिन ये देखो मेरी गाय जिनको मैं चराने जा रहा हूँ, जिनका मैं सेवक हूँ, वो तो जूता नहीं पहनती है, वो तो ऐसे ही जाती है, तो आप उनके लिए भी जूता लाओ। यशोदा सोचने लगी अगर 9 लाख गायों के लिए 4-4 एक के लिए जूते लग गए, 36 लाख जूते लाएंगी कहाँ से? तो यशोदा ने कहा ठीक है ऐसे ही रहने दो। तो कृष्ण भी बिना जूते चप्पल के जाते थे। तो गायों ने सुना, तो गायों ने सब ने जाकर पूरी जो भूमि थी उस पर जोर जोर से वो चलने लगी, सारी का जितने पत्थर थे उनको तोड़कर मिट्टी बना दिया, ताकि इतनी कोमल हो जाए ब्रज की रज कि जब कृष्ण चले तो उस पर उनको कष्ट ना। आज भी कई स्थानों पर ब्रज की रज एकदम बहुत कोमल है, ऐसे वो टेलकम पाउडर होता है लोग लगाते हैं, बस वो पाउडर की तरह है, बहुत सॉफ्ट, बड़ी कोमल। तो सारी गायों ने कर दिया कि कृष्ण आ रहे हैं तो उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। और एक उनकी सभा में एक और बात निश्चित हुई थी कि जहां जहां कृष्ण चलेंगे उनके चरण चिन्ह पड़ेंगे, कोई भी व्यक्ति कोई भी प्राणी उनके चरण चिन्हों पर अपना पांव नहीं रखेगा, ताकि उनके चरण चिन्ह बने रहे। अक्रूर जी जब वृंदावन आए, जैसे ही प्रवेश किया तो उन्होंने धूलि में कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा और भावाविभोर हो गए, लौटने लगे उस धूलि में कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर। तो इसीलिए कृष्ण के चरण चिन्ह कई स्थानों पर ब्रज में देखे जाते, जैसे इस अनुवाद में भी हम लोग देख रहे थे कि पशुओं के स्वास्थ्य पशुओं के साथ प्रवेश कर रहे हैं और अपने चरण चिन्ह उन्होंने हर जगह स्थापित किए। तो श्री कृष्ण ऐसे गायों को चराने वाले हो गए, गोपाल हो गए और फिर गायों को लेकर जाते थे बड़ी प्रसन्नता से। तो क्या अंतर था ग्वालों बछड़ों और गायों को चराने में? बछड़ों को बहुत निकट लेकर जाया जाता था, ज्यादा दूर नहीं जाते थे बछड़े, जो गांव था जहां रह रहे थे उससे थोड़ा सा ही। और रहते कहां थे कृष्ण? जैसे हम लोग देख चुके हैं कि जन्म हुआ था गोकुल में, अब आ गए वृंदावन, वृंदावन में करीब 3 वर्ष रहे, गोकुल में भी करीब 3-4 वर्ष रहे और बाकी के 3 वर्ष फिर नंद ग्राम में रहे भगवान। 10 वर्ष 8 महीने वृंदावन के ब्रज में वो रहे, फिर मथुरा चले गए। तो उनमें से गोकुल, वृंदावन और नंदगांव। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो केवल वहीं रहते थे, इन लोगों का जीवन बड़ा सरल था। जहां घास होती थी अच्छी तो सब वहीं जाकर रुक जाते थे, 3-4 महीना वहीं रुकते थे, फिर जब वहां घास खत्म हो जाती थी कोई दूसरी जगह चले जाते थे। जैसे हम लोग देखते हैं कि गोवर्धन लीला हुई, तो गोवर्धन लीला कहां पर हुई? अगर वृंदावन में होते तो इतनी दूर गोवर्धन थोड़ी जाते। आज भी गोवर्धन में वृंदावन 20-25 किलोमीटर है। तो इसीलिए वे लोग क्या करते थे, जहां जहां घास है, तो उस समय जब गोवर्धन लीला हुई तो गोवर्धन के निकट रह रहे थे, सब वहीं यज्ञ इत्यादि हो रहे थे, तभी तो भगवान को अर्पण किया गया वहां पर इतना, तो वो उसके निकट रहते थे। तो ऐसे इनका जीवन था, प्रमुख स्थान थे गोकुल, वृंदावन और नंदग्राम। लेकिन जहां जहां घास होती थी गायों को चरने के लिए, वहां वहां भी वो लोग 2-3 महीने रहते थे, फिर आ जाते थे, फिर 2-3 महीना। ऐसा बड़ा सरल जीवन था। हम लोग देख चुके हैं पिछले अध्यायों में कि जब उन्हें गोकुल से चलना था तो क्या हुआ, उसी दिन तैयार। उपनंद ने कहा जाना चाहिए, सब तैयार। ऐसा नहीं है कि अरे क्या होगा, घर बनाना है, सब सरल रहते थे। बैलगाड़ियों में बैठे चल दिए, ऐसे बैलगाड़ियां चारों तरफ लगाई अर्धचंद्र के रूप में, इस तरफ पर्वत था, बस हो गया उनका रहने का स्थान सुरक्षित, ऐसे रहा करते थे। तो ऐसे श्री कृष्ण अब वृंदावन में हैं, तो गायों को चराने लगे गोपाल बने। और एक समय वर्णन है कि कैसे भगवान इन सब बालकों को, जैसे इसमें हम लोग सुन रहे थे कि अब उनको ताल वन ले जाना चाहते थे, तो लोगों ने कहा प्रवेश किया। प्रवेश करते ही भगवान ने बहुत सुंदर दृश्य देखा, क्योंकि उस समय वृंदावन में जब भगवान रहते थे तो हर जो भी ऋतु होती थी वो केवल आनंद देती थी। तो भगवान वहां थे, उन्होंने देखा भंवरे हैं, बहुत सुंदर दृश्य है, वृक्ष हैं, फिर उन्होंने देखा वृक्ष बड़े झुक रहे हैं, मानो ऐसा हो कि झुक कर प्रणाम कर रहे हो कृष्ण को। तो कृष्ण ये जानते थे कि मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन बलराम जी का गुणगान करना चाहते थे। तो बलराम जी से कहते हैं तो वे बलराम जी से कहते हैं कि देखिए देखिए जो वृक्ष है ये आपको प्रणाम कर रहे हैं, झुककर कितने नीचे झुक गए हैं, उनके फल लग गए थे वो झुक रहे, तो देखिए कितना आपको प्रणाम कर रहे हैं, ये बड़े भाग्यवान हैं कि आपके दर्शन उन्हें हो रहे हैं। और ये जो भवरे हैं ये आपको पीछे पीछे आपके चल रहे हैं अनुयायियों की तरह, और देखिए मोर कैसे नाच कर आपको आकर्षित कर रहा है। तो कृष्ण इन सबको दिखाते हुए कह रहे हैं कि ये सब आपकी सेवा कर रहे हैं, बड़े भाग्यवान पृथ्वी बड़ी भाग्यवान है कि आपके चरण उस पर पड़ रहे हैं। ऐसे भगवान बलराम जी का वर्णन करते हैं। तो ये आठ श्लोक तक, पहले आठ श्लोकों तक वर्णन किया गया, फिर नौवें श्लोक से वर्णन आता है कि कृष्ण और बलराम तो नौवें श्लोक से वर्णन आता है कि कैसे कृष्ण और बलराम ये बाल लीलाएं करते हैं, क्या क्या खेल करते हैं इत्यादि। तो उसका वर्णन किया गया कि श्री कृष्ण जब चलते थे तो क्या खेल करते थे, कभी किसी पक्षी की आवाज निकालने लगते थे, फिर कभी मोर नाच रहे होते थे तो कृष्ण कहते थे अरे इनको मोरों को नाचना नहीं आता है, मैं नाच के दिखाता हूँ, तो कृष्ण मोर की तरह नाचने लगते थे। एक समय वर्णन तो ये है कि जब पहली बार कृष्ण नाचे मोर की तरह, मोर सारे शब्द हो गए, मोरों ने देखा कि ये तो हमसे अच्छा नाच रहे हैं, तो फिर मोरों के राजा ने आकर अपना पंख दिया कृष्ण को, तब से कृष्ण ने मोर पंख लगाना शुरू किया, तो कृष्ण मोरों की तरह नाचने लगते थे, ये लीलाएं करते थे वहां पर। और फिर कभी कभी बलराम जी बड़े थक गए तो बलराम जी ग्वाल बाल के गोद में सर रखकर लेट जाते थे और कृष्ण उनके चरण दबाते थे। देखिए कितना उस दृश्य को केवल स्मरण करना ही कितना आनंद देता है। वृंदावन है, वृक्ष हैं, लताएं हैं, बड़ा सुंदर वातावरण है, मोर नाच रहे हैं और एक वृक्ष के नीचे बलराम जी लेटे हुए हैं, थक गए हैं और किसी ग्वाल बाल के गोद में उन्होंने सर रखा है और कृष्ण उनके चरण को दबा रहे हैं। और कभी कभी कृष्ण लेट जाया करते थे और अन्य ग्वाल बाल उनकी सेवा करते थे। तो ऐसे ये लीलाएं हुई, तो इनका वर्णन करीब 19 श्लोक तक किया गया। फिर 20वें से 26वें श्लोक तक वर्णन किया गया कि कैसे एक समय स्तोक कृष्ण, श्रीदामा, सुबल ये जो इनके मित्र हैं ये आए कृष्ण बलराम के पास और कहने लगे कि यहीं पास में बहुत सुंदर वन है, ताल वन, जहां बड़े बड़े ताल के वृक्ष हैं और उसके जो फल हैं वो नीचे गिरते रहते हैं, बड़े सुगंधित हैं, उसकी सुगंध आती है, बड़े स्वादिष्ट हैं, हम उसको खाना चाहते हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हम उसको खाना चाहते हैं, लेकिन वो कहने लगे कि वहां पर एक बहुत बड़ा असुर रहता है गधे के रूप में, धेनु का असुर। देखिए जो असुर होते हैं सोचते भी नहीं कि कौन सा रूप लेना चाहिए, गधे का रूप ले लिए, कोई और ले सकते थे, तो गधे के रूप में रहते हैं धेनु का असुर और वो किसी को आने नहीं देता, बड़ा शक्तिशाली है, मनुष्यों को खा जाता है, तो इसलिए कोई डर से वहां जाता नहीं है, ना हम जाते हैं ना इतने सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग भी नहीं जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम लोग फल खाना चाहते हैं तो आप लोग वहां चलिए। देखिए इसको कहते हैं पूर्ण विश्वास कृष्ण पे। वो क्या कह रहे हैं कि धेनुकासुर कौन है जो मनुष्यों को खा जाता है, तो फिर उनको क्यों कह रहे हैं कि हम लोग चले वहां पर, क्योंकि पूरा विश्वास है कि कृष्ण मार डालेंगे, तो इसीलिए वो कहते हैं कि चलिए हम वहां जाए। तो कृष्ण बलराम से उन्होंने प्रार्थना की, तो ऐसा वर्णन है कि जब कृष्ण ने सुना तो मुस्कुराने लगे, तो मुस्कुरा रहे थे ये सोचकर कि ये जो बाल बाल है अगर इनके कष्टों को मैं दूर कर सकूं तो बहुत अच्छा है, सेवा करो। कृष्ण जब मुस्कुराते हैं, ये कृष्ण की जो मुस्कान है वो दो तरह से प्रभाव करती है, एक उन लोगों पर जो बद्ध है इस जगत में उन पर माया के रूप में प्रभाव करती है। हास्य जनक उन्माद पूरी च माया, भगवान का हास्य क्या है, माया देवी हंसती है हमारे ऊपर, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो सोचते हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, दरअसल वो धेनुकासुर की तरह गधे हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, ये सोचते हैं कि इस जगत में बिना भगवान के हम सुखी रह सकते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, तो श्री कृष्ण की मुस्कान बद्ध जीवों को माया प्रभावित करती है और वही मुक्त जीवों के सारे कष्टों को भगवान का जस्ट मुस्कुराहट सब गायब कर देती है। तो ऐसे श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और फिर उन सब ने तागवन में प्रवेश किया। श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार से इस लीला को नहीं दिया कि कैसे बलराम जी ने मारा, लेकिन हाँ गर्ग संहिता में बड़े विस्तार से वर्णन है। तो इस असुर को कृष्ण ने नहीं मारा, कारण क्या था? कृष्ण ने सोचा मैंने बहुत मार लिए हैं, थोड़ा बलराम जी को भी कुछ करना चाहिए, नहीं तो सारा क्रेडिट मेरे ही आ जाएगा, सब कृष्ण ने मारे, तो बलराम जी से भी कहना चाहते थे। दूसरा कारण था, भगवान ने प्रहलाद महाराज को वचन दिया था कि आपकी किसी भी वंशज को मैं मारूंगा नहीं, इसलिए बलराम जी से कहा, क्योंकि ये धेनुकासुर पूर्व जीवन में, अपने पूर्व जीवन में इसका नाम था साहसिका। साहसिका ये बलि महाराज का पुत्र था, अर्थात प्रहलाद के पुत्र का पुत्र, तो बलि महाराज का पुत्र था। तो भगवान ने सोचा कि मैंने वचन दिया है इनका उद्धार करूंगा, इनको मारूंगा नहीं, इसलिए बलराम जी मारेंगे, मैं नहीं मारूंगा। तो ऐसे ही उन्होंने बलराम जी को मारने के लिए ये अवसर दिया। तो इसीलिए वहां विस्तार से वर्णन नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में वर्णन किया गया कि बलराम जी आए। अब बलराम जी ने प्रवेश किया, कृष्ण आए, बलराम आए, दोपहर का समय था और धेनुकासुर सो रहा था, दोपहर का नींद ले रहा था। तो बलराम जी उसको जगाना चाहते थे, तो उन्होंने आके जोर से एक वृक्ष को हिलाया, जैसे वृक्ष का सारे जो फल थे वो गिरने लगे, धाड़ धाड़ धाड़, और बहुत ऊंचा वृक्ष होता है ताड़ का, तो सब गिरे, तो सब धेनुकासुर की नींद खुल गई। धेनुका भाग कर आया, उसने देखा बच्चे कृष्ण बलराम वहां पर है, तो उसने जोर से आकर बलराम जी की छाती में अपने दोनों पांव मारे, जानते गधा कैसे मारते, उसको दुलंती कहते, पीछे से मारता धाड़। तो उन्होंने दुलंती मारी सीधे बलराम जी की छाती में, बलराम जी को क्या होना है, कुछ हुआ नहीं। तो बलराम जी को क्रोध आया और उन्होंने उसको पकड़ा और ऐसे जोर से घुमाकर फेंक दिया, बड़ा शक्तिशाली था, फिर से उठकर आ गया। बलराम जी ने फिर उठाया और घुमाकर करीब 8 मील दूर फेंक दिया, बेहोश हो गया जा, इतनी जोर से गिरा, लेकिन फिर वापस आया और पूरी शक्ति से आया। और शक्ति से आया, क्या किया उसने, अपना रूप भयंकर कर लिया, 4 उसके सींग निकल आए अचानक और वो भाग रहा है बच्चों की ओर मारने के लिए, और ये सारे भागे अभी देख रहे हैं, ऐसा होता है ना, कभी कभी तो बड़ा आनंद ले रहे थे वो जब बलराम जी मार रहे थे, जब इनके पीछे भाग लिए सब भागे, ऐसा होता है कभी कभी हम लोग करते हैं। मैं ध्यान है मेरे फार्म हाउस फार्म कम्युनिटी है बेलगाम में गोकुल धाम, तो वहां पर शुरुआत में भक्त रहते थे, तो शुरुआत में जरा बड़े उत्साही भी रहते हैं, तो एक समय सुबह के समय जप कर रहे थे और सामने से हाथी जा रहा, जंगली हाथी वो साधारण हाथी की तरह नहीं होता है कि आप सूंड उठाओ बेटा तो सूंड उठाएगा आशीर्वाद दो, अरे ज्यादा जो अल्तू हाथी होते हैं इनसे यही कराते ना वो लोग, चलो वो सूंड से पैसा ले लो, वो सूंड ऐसे करता है उसको पैसा दे देते हैं, वो सर पर रख देता है आशीर्वाद। वो जंगली हाथी वैसा नहीं होता, उसका आशीर्वाद बड़ा खतरनाक होता है, बचता नहीं है आदमी उसके आशीर्वाद के बाद। तो जंगली हाथी वहां पर काफी आते तो जा रहे थे सामने से, तो आप जानते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं जरा उनको उत्साह भी ज्यादा होता है और वो निडर भी बहुत होते हैं, होते नहीं मगर कम से कम दिखाते हैं। तो सुबह सुबह जब का समय था जा रहे थे, वो आराम से जा रहा था हाथी, तो इन लोगों ने सोचा कुछ तो जरा पास से जाकर देखना चाहिए, तो केवल निकट चले गए उसको देखने के लिए। जैसे ही गए, हाथी की आंखें होती हैं वो चप तरफ देख सकता है, ऐसा लगता है कि वो सामने देख रहा है, उसने देख लिया हाथी ने कि ये आ रहे हैं इधर से। तो हाथी केवल घूमा और उसने जोर से ऐसे सूंड उठाकर आवाज की, ऐसे भागे सब, ऐसे भागे कि पूछिए मत, अगर धोती भी खुल गई होती तो कोई चिंता नहीं करते उस समय, बड़ी तेज भाग है वहां से। तो इसी तरह यहाँ बच्चे अभी तो बड़ा मजा ले रहे थे, हाँ बलराम जी ने जैसे वो आया उसने चार अपने सींग निकाल ली और बड़े भागा उनकी तरफ, तो वो भी भागे, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे थे बड़े शक्तिशाली, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ करना चाहिए, तो एक छड़ी दी और छड़ी लेकर उसको मार रहे। आप सोचिए इतना भयंकर इतना भारी राक्षस, तो छड़ी लेकर मार रहे, छड़ी लेकर कोई मार रहा है, कोई भूसा मारने का प्रयास कर रहा है, एक ने थप्पड़ मारा उसको, मतलब देखिए कि जब राजा शक्तिशाली होता है तो प्रजा अपने आप शक्तिशाली हो जाती है। कृष्ण बलराम शक्तिशाली, उनको ये भी चिंता नहीं है, ठीक है मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई कुछ कुछ हो नहीं रहा है उससे, लेकिन वो प्रयास कर रहा है, कोई छड़ी मार रहा है, तो सारे बालक ऐसे करने लगे कि कोई कर रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, लेकिन वो तो रुकने वाला नहीं था। तो फिर उस समय जब देखा कि कैसे सब बालकों को कष्ट हो रहा है, तो कृष्ण ने इसको पकड़ा, बड़ी जोर से घुमाया और गोवर्धन पर फेंक दिया, गोवर्धन पर, तो जाकर गिरा गोवर्धन पर बहुत जोर से, और फिर उसने उस गोवर्धन को उखाड़ लिया। गंध संहिता में वर्णन है कि गोवर्धन को उखाड़ लिया, इतना शक्तिशाली था, और गोवर्धन उखाड़ कर कृष्ण के ऊपर फेंका, पूरा गोवर्धन पर। तो कृष्ण ने गोवर्धन उधर ही पकड़ लिया, देखिए कृष्ण ने दो बार गोवर्धन उठाया, एक बार गोवर्धन लीला में, एक बार यहाँ। तो कृष्ण ने गोवर्धन पकड़ा और फिर से उसके ऊपर फेंकने वाले फेंका, उसने भी पकड़ लिया और फिर उसने कृष्ण के ऊपर फेंका, तो कृष्ण ने सोचा ये अच्छा नहीं है, गोवर्धन को गेंद नहीं बनाना चाहिए, तो कृष्ण ने जहां गोवर्धन थे वहां रख दिया उनको उनके स्थान पर। और फिर क्योंकि उन्होंने कृष्ण ने रखा, जैसे रखा इसने आक्रमण किया कृष्ण पर और उनको उठाकर ऊपर हवा में ले गया। गर्भ संहिता वर्णन करती है 800,000 मील ऊपर चला गया, और कृष्ण भी और ऊपर झगड़ा हो रहा है, लेकिन कृष्ण चाहे तो कहीं भी युद्ध कर सकते हैं, कृष्ण थोड़ा आनंद लेना चाहते थे, बहुत हो गया नीचे युद्ध, थोड़ा ऊपर युद्ध करेंगे, तो ऊपर युद्ध हो रहा है, दोनों लड़ रहे हैं ऊपर, तो ऐसे वो चला गया ऊपर हवा में और वहां पर युद्ध हुआ, और फिर वहां से फिर युद्ध करते करते उनको नीचे फेंक दिया। तो उस समय जब ऐसा सब चल रहा था, तो अब बलराम जी ने देखा कि अब बहुत हो गया, तो बलराम जी ने उसको पकड़ा और एक जोर से घूंसा मारा। बलराम जी घूंसा मारे तो क्या होगा, कौन हम सब समझते हैं, तो उसके प्राण चले गए। फिर उसने बलराम जी ने ऐसे उठाकर घुमाया और जोर से एक वृक्ष के ऊपर फेंक दिया, बहुत जो सबसे लंबा ऊंचा वृक्ष था उसके ऊपर फेंक दिया। तो जब फेंका तो वहां से तो बहुत सारे फल गिरे, लेकिन क्योंकि इतना भयंकर शरीर गिरा था, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे पेड़ गिरते गए। तो बलराम जी सोच रहे थे कि बच्चे सब फल खाना चाहते हैं, तोड़ेंगे कैसे, तो उन्होंने एक ऊपर फेंका तो एक के बाद एक, एक, एक सब गिर गए, तो बहुत सारे वृक्ष गिर गए नीचे और बहुत सारे फल। तो ऐसे धेनुकासुर का वध हो गया। तो हम बता रहे थे कि पूर्व काल में ये धेनुकासुर बलि महाराज का पुत्र था, साहसिका इसका नाम था। एक समय ये कुछ स्त्रियों के साथ आनंद ले रहा था दुर्वासा मुनि के आश्रम के निकट, और फिर धीरे धीरे बहुत आवाज करने लगे, चिल्लाने लगे। ऐसा होता है ना कि जब व्यक्ति आनंद लेने लगता है तो भूल जाता है कहाँ है, क्या करना है, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, आवाजें करने लगे। तो फिर दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हुआ, दुर्वासा मुनि आए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। दुर्वासा मुनि वैसे ही क्रोधित रहते हैं, तो उन्होंने श्राप दे दिया। दुर्वासा मुनि ने कहा कि तुम एकदम अज्ञानी की तरह कार्य कर रहे हो, यहाँ आकर ऐसे इतना हंगामा कर रहे हो इस पवित्र स्थान में, तो तुम मूर्ख हो, गधा बन जाओ। तो उन्होंने श्राप दिया तो वो गधे बन गए। तो फिर जब क्षमा याचना की तो उन्होंने कहा कि आगे चलकर बलराम जी तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो फिर ये वही असुर था जो यहाँ पर आया। तो जब अब उसको मार दिया तो उसके अन्य साथी भी आए, अब उन्होंने आक्रमण किया कृष्ण और बलराम पर, बहुत सारे उसके साथी थे, सब गधे थे, गधों के साथी गधे ही होंगे और क्या कर सकते हैं, तो सारे गधे थे, तो उनको भी मार, तो एक एक को कृष्ण, किसी को कृष्ण मार रहे हैं, किसी को बलराम मार रहे हैं, किसी को कृष्ण, वो आते जा रहे उठा उठा के फेंक रहे, बहुत सारों को मार दिया। और ऐसा वर्णन करते हैं कि जब मार दिया सब गिर गए, तो कहने लगे पृथ्वी बड़ी अच्छी लगने लगी, क्योंकि ऐसे रंग रंग बिरंगी है, ये लोग थे पड़े हुए, उनके ऊपर पूरे फल पड़े हुए हैं, तो ऐसे सारा व्रत कर दिया धेनुकासुर को। और फिर जब ये मार दिया धेनुकासुर को, मार दिया सारे फल, ऐसा वर्णन है कि कुछ बालकों ने फल लिए, कुछ ने नहीं लिए, वो फल क्योंकि खून लग गया था तो उसको नहीं लिया, तो ऐसे सब फिर वहां से उन्होंने इस लीला को किया। तो धेनुकासुर ये हमारी भक्ति के मार्ग में कौन से अनर्थ को प्रकट करता है? धेनुकासुर अज्ञान को प्रकट करता है, गलत फहमी को प्रकट करता है। कभी कभी भक्ति करते हुए अज्ञान हो जाता है, या अज्ञान में भक्ति की जाती है, या फिर हमें कई गलत फहमियां हो जाती है, तो ये धेनुकासुर है। क्योंकि मूर्ख गधा, ज्यादातर गधा मूर्खता के लिए, अज्ञान के लिए जाना जाता है, तो धेनुकासुर अज्ञान को प्रकट करता है। भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता है या नहीं? भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता है, इस ज्ञान की कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हमें उनकी सेवा करनी है। तो इसलिए बिना ज्ञान के तो कौन सा अज्ञान प्रकट करता है? ये पहला, अपने आप को न जानना, आत्म तत्व को न जानना, आत्म ज्ञान को न जानना, अपनी सही पहचान को भूल जाना, ये धेनुकासुर है। दूसरा, क्या करना है क्या नहीं करना इसके अज्ञान में रहना, ये भी धेनुकासुर। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो असुर होते हैं उनको पता नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसीलिए ये भी अज्ञान है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अधर्म को धर्म मानना और धर्म को अधर्म मानना, ये धेनुकासुर है। तो अपनी पहचान भूल जाना, जो करना है क्या नहीं करना वो भूल जाना, और अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानना, ये धेनुकासुर है। तो इसका वध कैसे होता है धेनुकासुर का? ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान भक्ति में आवश्यक है। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक परमार्थिका और दूसरा लौकिका। लौकिका अर्थात इस लोक का जो ज्ञान है उसको लौकिक ज्ञान कहते हैं, और परमार्थिका मतलब जो इस जगत के परे ले जाए। और हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर ये जो लौकिक ज्ञान है इसमें वृद्धि हो रही है, पारमार्थिक ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हो रही, क्यों? वो जैसा है वैसा है, वो शाश्वत ज्ञान है। लेकिन लौकिक ज्ञान में हम देखते बड़ी वृद्धि हो रही है, आज मानव ने ये ढूंढ लिया, आज ये पता चल गया, आज वो हो गया, आज ये खोज हुई है, आज ये नई बीमारी आई, आज इसका इलाज मिला, तो लौकिक। और यही हमारे इस बंधन का कारण है, यही हमारे सारे कष्टों का कारण है कि हम लौकिक ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं लेकिन परमार्थिक ज्ञान का पालन करने का, अनुशीलन करने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, यही कष्ट है। तो इसीलिए लौकिक ज्ञान क्या है? जो हमें सिखलाता है कि इस जगत में कैसे अच्छे रहना है। मान लीजिए हम लोग किसी होटल में रह रहे हैं, होटल के किसी कमरे में, तो होटल के कमरे में रहकर होटल के कमरे को बहुत अच्छा करने का प्रयास करना या होटल को बहुत अच्छा करने का प्रयास करना मूर्खता है। आप यात्री हो, आप आए हो, दो दिन रुकोगे चले जाओगे, ये आपका काम नहीं है। आपको बस वहां रुकना है, जब तक आवश्यक कार्य है रुके और चले जाए। होटल इसीलिए होता है, होटल में कोई बहुत लंबे समय तक रहने नहीं जाता है, होटल में उतने समय के लिए जाया जाता है, दो दिन तीन दिन काम पूरा हुआ बाहर। ऐसे ये जगत होटल है, आए काम करें वापस जाना, इसको अच्छा बनाने का प्रयास मत कीजिए। या फिर कभी कभी हम लोग शौचालय में जाते हैं, कभी कभी नहीं रोज जाते हैं, शौचालय में जाते हैं, तो शौचालय जाने का उद्देश्य क्या है? उसको बड़ा अच्छा बनाना। अब वहां जाके सोचे यहां अगर एसी हो तो कितना अच्छा, यहां पर थोड़ा टीवी लगाए बहुत अच्छा होगा, यहाँ पर बहुत अच्छी और सुविधा होनी चाहिए, तो टॉयलेट को, शौचालय को अच्छा करने का क्या लाभ है? साफ सुथरा रखना अच्छी बात है, लेकिन उसमें सुविधाओं को प्रदान करना क्या लाभ? आए हैं जिस काम के लिए वो काम कीजिए, बाहर जाइए, खत्म। वहां कोई रहने के लिए तो होता नहीं। आजकल लोग रह रहे हैं वो अलग बात है। आजकल हमने एक बार एक एडवर्टाइजमेंट देखा, मार रहे थे, तो बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट था कि योर, मतलब कोई टाइल्स कंपनी का कुछ एडवर्टाइजमेंट था कि योर बाथरूम इज बेटर देन योर बेडरूम, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ था। एग्जैक्ट पता नहीं क्या, तो आपका जो बाथरूम है वो बेडरूम से अच्छा, मतलब आप उसको छोड़कर वहां पे रहना शुरू कर दीजिए। तो ये कोई उद्देश्य नहीं है। आजकल बहुत अच्छा अच्छा बनाया जाता है, लोग उसके लिए अच्छा बनाना ठीक है, साफ सुथरा रखना ठीक है, लेकिन उसमें सुविधाएं बढ़ाते जाना और ये सोचना कि हमें इसी में रहना है, मूर्खता। तो इसीलिए ये जगत ये होटल के समान है, शौचालय के समान है। आइए काम कीजिए, बाहर जाना। तो लौकिक ज्ञान क्या करता है, कैसे इसका और आनंद बढ़ा ले, कैसे और बढ़ जाए। सो इसीलिए हमें लौकिक ज्ञान को लेने का प्रयास ज्यादा नहीं करना चाहिए, परमार्थ का ज्ञान। लौकिक ज्ञान से क्या लेना है, इस जगत के ज्ञान से हमें क्या लेना है, हमें सीखना है कि कितना कष्ट है इस जगत में। कभी कभी लोग बोलते हैं कि गलतियां करके हम सबको सीखना चाहिए। हमारे पास अपने जीवन में उतना समय नहीं है कि हम सारी गलतियां करके सीखें, इसीलिए दूसरों के अनुभव से सीख लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वो है, प्रभुपाद समझाया करते थे कि हमने सुन लिया शास्त्र में चोरी करना गलत है, बंद कर देना है। ये नहीं कि हम चोरी करके देखेंगे क्या कष्ट होता है। तो हमारे पास जीवन में उतना समय नहीं है कि हम सारी गलतियां करके सीखें, हमें अन्यों के अनुभव से सीख लेना है। शास्त्र में भरा पड़ा है अनुभव, ययाति महाराज ने क्या किया सीख लीजिए बस उनके अनुभव से, कोई जरूरत नहीं है हमें उसको अनुभव करने की, समय नहीं है हमारे पास उतना। इसीलिए परमार्थ का ज्ञान को बढ़ाना, भगवान के ज्ञान को बढ़ाना। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्य ज्ञान चयन है। भक्ति कीजिए, ज्ञान वैराग्य प्रकट होगा ही। भगवान की भक्ति को कीजिए। जीव किसमें लगा है, काम में। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे दयावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। भागवत कहता है पहला स्कंद दूसरा अध्याय। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, ये हमारा जीवन इसलिए नहीं बना कि काम वासना इंद्रिय प्रीति इसी में हम बसे रहे। लाभो जीवे दयावता, कोई लाभ नहीं है सब चीजों से। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उद्देश्य क्या है, भगवान के विषय में जाने, अपने विषय में जाने, तत्व जिज्ञासा करें, वो जीवन का उद्देश्य है। तो इसलिए ये हमें करना चाहिए, वो सच्चा धर्म है। धर्म सुनिष्ठिता पुंस विश्वक्सेन कथा सुय, भगवान की कथाओं में रुचि बढ़ाना, ये सच्चा धर्म है। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान। कभी कभी लोग अपने प्रियजनों को बहुत प्रेम करते हैं, कोई पति अपनी पत्नी को करता है, पत्नी अपनी पति को करती है, लेकिन कब तक करती है, जब तक पति जीवित रहता है। तो जब, तो इसका अर्थ क्या है, वो व्यक्ति को, उस जिसको देख रही है, पति को प्रेम नहीं कर रही है, वो दरअसल आत्मा को प्रेम कर रही है। आत्मा चला गया, उसी शरीर से प्रेम नहीं रहता, छूने में भी नहाना पड़ता है, जला दिया जाता है, खुद परिवार कह जल्दी जलाइए, जल्दी जलाइए। तो क्या अर्थ है, बड़ा सरल अर्थ है, हमारी बुद्धि से हमें सोचना चाहिए। आज हम जिनको प्रेम कर रहे हैं, शरीर को नहीं आत्मा को प्रेम कर रहे हैं, आत्मा चली गई, शरीर से कहां प्रेम रहेगा। लेकिन जो अज्ञान में है वो केवल शरीर समझ कर प्रेम करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि प्रेम आत्मा से होता है और हर आत्मा से हम प्रेम कर सकते हैं, पर हम परम आत्मा भगवान कृष्ण से प्रेम करना सीखने। और उसके लिए ज्ञान चाहिए। धेनु का सुर को मारना है तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान क्या है? ये गाय की तरह, जैसे गाय हर स्थान पे अपने बछड़े की रक्षा करती रहती है। आप पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है कि जब गाय का बछड़ा होता है, जन्म लेता है, उसके बाद कई दिनों तक माँ कैसे उसको संभालती है, कहीं किसी को आने नहीं देती पास में, जरा सा कोई आए तो कभी कभी तो मारती है, दूर करती है, जहां जहां जाए बछड़ा पीछे पीछे जाती है। बछड़ा छोटा सा होता है, भागता है इधर उधर, और माँ को खोल दिया जाए तो वो भी जाती है। तो इसलिए ये गाय की तरह है ज्ञान, जो जैसे गाय बछड़े का रक्षा करती है, ऐसे ज्ञान हर अवस्था में हमारी रक्षा करता है। इसलिए ज्ञान को रोज लेना चाहिए। चाणक्य पंडित बताते हैं कि जैसे बूंद बूंद भर भर कर एक गागर भर जाता है, ऐसे ही अगर हम लोग हर रोज ज्ञान को लेते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा भंडार, बहुत बड़ा खजाना तैयार हो जाता है। और ये सच्चा खजाना ज्ञान का, जो व्यक्ति सही ज्ञान में होता है उसके लक्षण क्या है, किसको कहा जाएगा आज की अवस्था में अगर हम जानना चाहें कि वो ज्ञान में, पहला लक्षण उसका हम ले सकते हैं कि वो जितने भी आकर्षण, इस जगत के आकर्षण करने वाली सुविधाएं हैं या आनंद है, उनको त्याग देता है। जहां पर भी उसको लालच वाला दिया जाता है, टेम्प्टिंग, उनको त्याग देता है, वो उन आनंद में कोई रुचि नहीं रखता। दूसरा लक्षण है वो उन सारे स्वादों को भी त्याग देता है जो केवल इंद्रिय के भोग के लिए जिह्वा को आनंद देते हैं, उस स्वाद को नहीं लेता, वो उस स्वाद को लेता है जो कृष्ण को आनंद दे चुका है। बाकी ऐसे सारे स्वादों को त्याग देता है कोई जिह्वा को। तो हमें केवल जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, हमें वो खाना चाहिए जो कृष्ण को स्वाद दे चुका है, अर्थात प्रसाद। कृष्ण को पहले से उसका स्वाद ले चुके हैं, उसको हमें स्वाद लेना चाहिए, हमारी जिह्वा के लिए स्वाद नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान का लक्षण है। अर्थात क्या है, हो सके तो हमें केवल प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तीसरा लक्षण ज्ञानी व्यक्ति का है, वो व्यक्तिगत सुंदरता में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। भगवान के लिए निश्चित वो अच्छी तरह से अपने आप को प्रस्तुत करता है, लेकिन अन्यों को आकर्षित करने के लिए सुंदर नहीं बनता। ज्ञान का लक्षण है ये, क्योंकि जो अज्ञानी व्यक्ति है, आत्मा को नहीं समझ रहा, वो अपने आप को बहुत सुंदर प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। किस लिए? अन्य लोग आकर्षित हो जाए। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति ये केवल कृष्ण के लिए अपने सौंदर्य को प्रकट कर सकता है, या कृष्ण के लिए सुंदर दिख सकता है, अन्यथा लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाने का प्रयास नहीं करता। तो ये ज्ञान के कुछ लक्षण हैं। साथ ही साथ और भी लक्षण बताए गए हैं, बहुत ज्यादा सोता नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति जो होगा वो बहुत ज्यादा सोएगा नहीं, क्योंकि सोना भी तमोगुण का लक्षण है, बहुत ज्यादा सोना। ये बंद कीजिए, किसका मोबाइल कहां चल रहा है। तो बहुत ज्यादा सोता भी नहीं है, और बहुत ज्यादा मनोरंजन में नहीं पड़ता इस जगत के। तो ये सारे लक्षण अगर हम देख रहे हैं, उसको मनोरंजन में बड़ा आनंद आता है, सोने में बड़ा आनंद आता है, खाने में अलग अलग प्रकार के जब तक चीज ना हो उसको आनंद आता है, तो इसका अर्थ है कि अभी तक ज्ञान में नहीं है। तो ऐसे और सबसे बड़ा लक्षण क्या है यानी व्यक्ति का, कृष्ण भावना मूर्त के कार्यों को बड़ी गंभीरता से करता है। तो सच्चा ज्ञान वो है जहां कृष्ण भावना मूर्त को गंभीरता से स्वीकार करें। और कृष्ण भावना मूर्त क्या करता है, ये हमें समझाता है कि हर उस व्यक्ति के संग में रहिए जो आपको कृष्ण की ओर ले जाए। और हर वो व्यक्ति, फिर वो चाहे आपका गुरु क्यों ना हो, फिर वो चाहे आपका संबंधी क्यों ना हो, मित्र क्यों ना हो, पिता क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, त्याग देना चाहिए अगर कृष्ण से दूर ले जा रहा। ज्ञानी गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। भागवत कहता है कि बनना नहीं चाहिए पिता गुरु माता स्वजन दैव कुछ नहीं। क्यों? अगर आप न मोचये समुपेत, अगर आपके आश्रितों को आप मुक्त नहीं कर सकते। और हम देखते हैं इसके बहुत सुंदर उदाहरण। गुरु न सस्या, बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया। क्यों? कृष्ण की सेवा के लिए मना कर रहे थे, बिल्कुल नहीं देना इनको, विष्णु है धोखा देगा। बलि महाराज ने त्याग दिया। गुरु न सस्या, पिता न सस्या, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को त्याग दिया। क्यों? भगवान के विरुद्ध ले जा रहे थे। स्वजनों न सस्या, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, भगवान के विरुद्ध जा रहे थे। जननी न सस्या, भरत महाराज ने अपनी माता कैकेयी को त्याग दिया, भगवान की सेवा के विरुद्ध ले जा रहे थे। पति न सस्या, गोपियों ने अपने उन पतियों को त्याग दिया जिन्होंने विरोध किया कृष्ण की भक्ति का। तो इसीलिए ज्ञान ये है कि हम ऐसे संग में रहें जो हमें कृष्ण की ओर ले जाए। तो ये इससे हम धेनुका सुर का वध कर सकते हैं। धेनुका सुर और एक रूप में प्रकट होता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो वैष्णवों को, जय श्री श्री गौरी, ये सोचता है कि ये जो वैष्णविज्म, ये जो वैष्णवता है, ये एक प्रकार का कल्ट है। कल्ट समझते हैं, एक प्रकार का बोली कॉल कल्ट नहीं, खैर ठीक है, जो भी है आप समझ गए ना, बहुत अच्छा। तो ऐसा मानता है वो व्यक्ति, या वो व्यक्ति जो भक्ति में भक्ति करते हुए ऐसा भक्त भक्ति को केवल मैकेनिकल रूप में करता है, यांत्रिक तरीके से, बस बैठना है, सुबह करना है, सोना वाला, जब हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हो गया, बस खत्म, मशीन बंद। तो जो केवल मैकेनिकल रूप में करता है वो भी धेनुका सुर है। या फिर वो बहुत ज्यादा वेदों के शब्दों पर या वेदों की जो बातें हैं उन पर बहुत ज्यादा आसक्त आकर्षित है, उसके सार की ओर भी। ऐसे सारे व्यक्ति धेनुका सुर है। तो इसीलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत को आचार्य के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर स्वीकार करें, अपने मन से कृष्ण भक्ति भी ना करें। तो ऐसे हम धेनुका सुर का वध कर सकते हैं। तो धेनुका सुर का वध हो गया और फिर सब लोग वापस आए, सारे जो बाल 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 थे इत्यादि, तो वो सब वापस आए। गोपियों ने बहुत आनंद लिया। जब कृष्ण चले जाते हैं सुबह और शाम तक जब नहीं होते हैं, गायों को चराने ले जाते हैं, तो गोपियां मानो प्राय मृत रहती है। और जैसे ही कृष्ण आते हैं शाम को, गोधूली दिखाई देती है उनको। गोधूली का समय मतलब शाम का समय होता है जब गायों की खुरों से धूल उड़ती है, दूर से दिखाई देता है गायें आ रही हैं। तो सब के लिए नेत्रोत्सव होता है, कृष्ण के दर्शन वो करती है। तो गोपियों ने ऐसे किया, यशोदा और रोहिणी ने दोनों को बड़े प्रेम से पहले नहलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन कराए और फिर उनको सुला दिया दोनों को। तो ऐसे ये हुआ। फिर आगे अंतिम विभाग में वर्णन करते हैं, श्लोक नंबर 47 से वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि एक समय कृष्ण बलराम जी के बिना बालकों को लेकर गए यमुना के तट पर। बालक बड़े प्यासे थे और उन्होंने जल पिया, जैसे ही पिया विषैला जल था, सब मर गए। कृष्ण ने देखा और फिर कृष्ण ने केवल अपनी दृष्टि उन पर डाली और उनको पुनः जीवित कर दिया। और बाल बाल पुनः जीवित हो गए और वे जान गए कि जल पीकर हम मर गए थे, कृष्ण ने हमें पुनः जीवित किया है। तो ऐसे यहाँ पर इस अध्याय को सुखदेव गोस्वामी रोकते हैं और फिर आगे अगले दो अध्यायों में कालिया उद्धार का वर्णन होगा, तो कल काली अनवर लीला को कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न कोई टीका टिप्पणी? यस तो
कल की क्लास में का क्वेश्चन है, कृष्ण लीला बुक से बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने भगवान ब्रह्मा जी से भगवान रुष्ट हुए जबकि उन्होंने ग्वाल बाल को छिपाया था, लेकिन आपने ऐसा बताया कि ब्रह्मा जी से भगवान प्रसन्न हुए थे।
निश्चित, जब भगवान रुष्ट होते हैं तो एक बाहरी दृष्टि से वो रुष्ट होते हैं। जैसे जब यशोदा उनको छोड़कर चली गई तो कृष्ण ने बहुत क्रोध प्रकट किया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि वो यशोदा से क्रोधित थे। तो भगवान बाहरी दृष्टि से भले ही दिखा रहे थे, इसीलिए उन्होंने हमने कल भी वर्णन किया था कि उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हृदय में बड़े प्रसन्न थे क्योंकि एक वर्ष तक उन्हें इतना गोपियों के साथ और द्वारकायन के साथ रहने का आनंद प्राप्त हुआ था। और
Does the universal also signifies the loss of power of discrimination in bhakti?
Loss of discrimination of power in bhakti comes due to ignorance, and the Dhenukasu definitely represents ignorance. So yes, one of the symptoms of a person who is not in knowledge is that he is not able to discriminate, which I already described, that a person who doesn't know what to do and what not to do, that itself means that he has lost the discrimination power. Aur koi prashn?
Shastron ka naam Hari naam hai, jo bhakt 24 ghante mein 12 ghante karte hain.
Shastron ka
saar Hari naam hai, jo bhakt 24 ghante mein se 12 ghante Hari naam jap karte hain, jo purna dhyan purvak na bhi ho to use bhagavat katha ya anya gyan की या शास्त्र अभ्यास की आवश्यकता है?
अगर कोई 24 घंटे में से 12 घंटे जप करते हैं तो क्या उन्हें शास्त्र सुनने की आवश्यकता है? हमें ये जानना चाहिए कि भक्ति का मार्ग स्वतः निश्चित नहीं किया जाता, इस बात को अपने मन में हमें बिठा लेना चाहिए। तो कौन निश्चित करता है हमारे लिए भक्ति का मार्ग? आचार्य। तो जो आचार्य होते हैं वो काल समय के अनुसार या स्थिति के अनुसार वो एक निश्चित कर देते हैं कि ये आपको करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने हम सबके लिए निश्चित कर दिया कि ये आपको करना है, अगले 10,000 साल तक यही चलेगा, जब तक इस काम है, जब तक महाप्रभु का आंदोलन है। तो इसीलिए उन चीजों को करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने मन से जब इजाद करते हैं, बनाते हैं किसी चीज को कि शायद ये मेरे लिए अच्छा है, शायद वो मेरे लिए अच्छा है, तो वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। तो जो मार्ग श्रील प्रभुपाद ने दिया, पूर्ववर्ती आचार्यों ने दिया, हमें उसका पालन करना चाहिए। तो पहली बात यह है कि अगर आप ये सोचते हैं कि केवल हम 12 घंटे जप करेंगे, हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसा नहीं दिया। दूसरी चीज कि अगर हम 12 घंटे जप भी कर रहे हैं, क्या हमारा जप उतना अच्छा है, उतना शुद्ध है? तो जप का उद्देश्य केवल मैकेनिकल जप करना नहीं है, जप का उद्देश्य है धीरे धीरे उस जप की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए कृष्ण से प्रेम बढ़ाना। अगर आपका प्रेम बढ़ रहा है कृष्ण से, आपके हृदय से सारी भौतिक इच्छाएं जा रही हैं, आपके हृदय में हर रोज 12 घंटा करने के बाद केवल कृष्ण प्रेम जागृत हो रहा है, कृष्ण का नाम सुनते ही आंखों में आंसू आ रहे हैं, बहुत अच्छा। नहीं तो शास्त्र सुनिए, क्योंकि ये वर्णन किया गया है कि अगर कोई भगवान का नाम भी जप कर रहा है लेकिन उसको आत्मज्ञान नहीं है, वो है कौन, किस लिए ये जप कर रहा है, अगर वो सुनेगा नहीं कि हम कौन हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, तो फिर कैसे जप का गुणवत्ता बढ़ेगा। तो जप में रुचि बढ़ाने के लिए सुनना अनिवार्य है। अगर आप 12 घंटे जप करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगले 12 घंटे श्रवण कीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। ये सब को प्रश्न,
जो वेदों के सार की तरफ आकर्षित होते हैं वो क्या धेनुकासुर है? प्रभु जी इस पे थोड़ा प्रकाश।
वेदों के सार की तरफ, हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि जो वेदों के सार की ओर आकर्षित होते हैं वो धेनुकासुर है, ये तो नहीं, गलत प्रश्न है। हमने कहा जो वेदों को केवल उनके शब्द के रूप में, उनकी जो मंत्र है उनसे आकर्षित होते, सार से आकर्षित नहीं होते, वो धेनुकासुर है। सार से आकर्षित होने वाले तो भक्त कहलाते हैं, सारग्राही उन्हें भक्त कहा जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बताइए।